मन की दुर्बलता को कैसे रोकें, ये जानने के लिए सबसे पहले तो इस पर विचार करें कि मन में चलता क्या है। आप कभी भी रुक कर देखो तो मन के अंदर हर प्रकार के सांसारिक विचार चलते रहते हैं, और जितने भी सांसारिक विचार हैं उसका यदि विज्ञान देखा जाए तो सत्पुरुष कहते हैं मनुष्य के अंदर जो वासना है, जो तीन गुणों से प्रेरित होती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण हैं जो संपूर्ण प्रकृति में देखने को मिलते हैं। और हर मनुष्य का स्वभाव भी इन्हीं तीन गुणों से प्रेरित होता है, उसकी वासना भी इन तीन गुणों से प्रेरित होती है। अब पूर्व जन्मों में जिसने जो भी स्वभाव बनाया है, संस्कार बनाए हैं, उसके अनुसार ही बचपन से इस जीव के मन की हालत होती है। आप देखते होंगे एक छोटा सा बालक है, अभी उसने पैरों पे चलना भी शुरू नहीं किया है, घुटनों के बल चलता है। एक बालक किसी चलते हुए कीड़े को देखेगा, हाथ से मसल देगा उसको, उसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, उसका स्वभाव है। एक शांति से उसकी चाल को देखता रहेगा, एक बालक है अभी साल भर का ये है या दो साल का ही है, हर समय माँ से कोई ना कोई डिमांड करता रहेगा, माँ को 10 मिनट भी वो चैन से रहने नहीं देता। एक बालक है बड़ी शांति से पड़ा रहता है, दूध पिला दिया, खाना खिला दिया, अपने आप में खेला है वो, किसी को परेशान नहीं करता। एक बालक है देखा होगा आपने, बड़ा क्रोधी होता है, सारा घर का सामान भी उठा के फेंक देगा वो, उसको संभालना माता पिता को मुश्किल पड़ता है। तो अभी उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, वो पूर्व जन्म का स्वभाव लेकर पैदा हुआ है, तो उस स्वभाव से प्रेरित होकर उसकी शारीरिक क्रियाएं हो रही है। तो इसी स्वभाव को अध्यात्म में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीन कैटेगरी में बांटा है। सतोगुणी जो वृत्ति होती है या सतोगुणी स्वभाव जिसमें अधिक होता है, जो डोमिनेट करता है, तो उसका बच्चे का या उस व्यक्ति का शांत स्वभाव होता है, दूसरे की बात भी बर्दाश्त कर लेगा, अपनी वस्तु भी यदि वो दुखी है तो उसको दे देगा, अपना आराम छोड़कर दूसरे को आराम देने की कोशिश करेगा, और उसको मंदिर अच्छा लगता है, ईश्वर की बात अच्छी लगती है, शांत स्वभाव का होता है। और एक जो है व्यक्ति आप देखते होंगे कि बस वस्तुएं उसको अधिक से अधिक चाहिए और बड़ी वैरायटी चाहिए उसके अंदर, नित नए भोग चाहिए उसको अंदर, नई नई जगह घूमना चाहिए उसको, तरह तरह के आहार चाहिए उसको। और इसके लिए वो बड़ा हो जाता है तो प्लानिंग करता है, इसी के लिए कमाई करता है, इसी के लिए सारा पुरुषार्थ करता है, पढ़ाई करता है। तो इसको अध्यात्म में रजोगुणी स्वभाव कहा गया। लेकिन रजोगुणी स्वभाव का जो प्रभाव है, आप सब जानते हैं कि इतनी प्लानिंग जो करेगा, इतनी मेहनत जो करेगा, इतना सांसारिक विकास करने की जो सोचेगा ताकि अधिक से अधिक सुखों की वैरायटी में भोग सकूं, तो कितना व्यस्त रहेगा, कितना अंदर से मानसिक बेचैनी को लेकर जिएगा वो, विचार करके देखें। तो जो लोग रजोगुणी स्वभाव के होते हैं, अर्थात रजोगुण स्वभाव उनके अंदर गहरा होता है, बाकी हल्के होते हैं, होते तीनों हैं सबके अंदर, लेकिन बाकी हल्के होते हैं, एक प्रबल होता है। तो शास्त्र कहते हैं कि ऐसे स्वभाव का व्यक्ति जीता तो सुख प्राप्ति के लिए, संसारी दृष्टि से बड़ा होशियार भी होता है, बड़ा चालाक भी होता है, लेकिन अल्टीमेटली ये स्वभाव उसकी परेशानी का कारण बनता है, उसके पतन का कारण बनता है। क्यों पतन का कारण बनता है? क्योंकि वो उसमें सेटिस्फाई नहीं हो सकता, फ्रस्ट्रेट अंदर से होता है। फिर फ्रस्ट्रेट होता है तो बुद्धि का निर्णय उल्टा सीधा ले लेता है, वो गलतियां करने लगता है। जैसे कि आप देखते होंगे बड़े बड़े देश के अंदर अमीर लोग पड़े हुए हैं, लेकिन किस बेईमानी में उतर आते हैं, फिर कोई पैसे की कमी है, उनको खुद पता है कि मेरी 3 पीढ़ी भी भोगना चाहेंगी इस पैसे को, तो ये पैसा खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी बेईमानियां करते हैं, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट से सेटिंग करके ऐसी पॉलिसीज बनवा लेते हैं तो देश ही चौपट हो जाए। तो इसीलिए रजोगुण अल्टीमेटली तमोगुण की तरफ ले जाता है, बुद्धि को अंधकार की तरफ ले जाता है। और तमोगुण तो हम जानते ही हैं, हरी पाप रूप, अंधकार रूप, खान पान बिगड़ा हुआ उसका, व्यवहार बिगड़ा हुआ उसका, कर्म उसका बिगड़ा हुआ, उसके व्यवहार से, उसके जीवन से दूसरों को दुख पहुंचता है, पाप ही जीवन होता है। तो जिस स्वभाव को लेकर मैं जी रहा हूं, उस स्वभाव के अनुसार मेरे मन के अंदर विचार चलते रहते हैं और ये प्रक्रिया निरंतर बनी रहती है। जिस प्रकार समुद्र की लहरें कभी 1 सेकंड के लिए भी रुकती नहीं है, वो प्रक्रिया निरंतर है। वायु निरंतर बहती रहती है, 1 सेकंड के लिए भी वायु पूरी तरह से रुकती नहीं है। उसी प्रकार से मन के अंदर विचारों की गति भी निरंतर चलती रहती है, नॉन स्टॉप। और जिस स्वभाव के अनुसार विचार हमारे अंदर से निकलते हैं, उसी स्वभाव के अनुसार फिर हमारे मन के अंदर इच्छाएं पलती हैं। जब इच्छाएं पलती हैं तो इच्छा पूर्ति के लिए अंदर से प्रेरणा होती है, तो इस शरीर का, कर्म इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का हम इस्तेमाल करते हैं उस इच्छा पूर्ति के लिए। तो जितना भी ये सांसारिक जीवन है, ये केवल कामना पूर्ति के लिए, क्योंकि कामना पूर्ति में संतोष मिलता है। लेकिन वो जो संतोष मिलता है, वो असंतोष के संस्कार बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि हर जीव की ये दशा है कि वो, जैसे सुख और दुख की बात हो तो दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो कह दे मुझे दुख चाहिए, वो कहेगा मुझे सुख चाहिए। अब गर्मी में किसी को परेशानी होती है, कहता है मुझे ठंडा मौसम चाहिए। प्रकृति में हर चीज द्वंद रूप में है, जोड़े के साथ है, और हर मनुष्य को उसमें से एक चाहिए। लाल और सफेद कपड़ा रखा हुआ है, कोई कहेगा मुझे सफेद चाहिए, कोई कहेगा मुझे लाल चाहिए। सफेद की जगह लाल मिल जाए तो बेचैन हो जाएगा वो, और किसी को लाल की जगह सफेद मिल जाए तो बेचैन हो जाएगा। तो ये लाइकिंग डिसलाइकिंग है, इसी को ही अध्यात्म में राग और द्वेष कहा जाता है। एक चीज मुझको चाहिए और एक चीज मुझको नहीं चाहिए, मित्र चाहिए दुश्मन नहीं चाहिए, उजाला चाहिए अंधेरा नहीं चाहिए। तो दुनिया में जितनी चीजें आप जानते हो वो जोड़े के साथ है, दुनिया में जितनी चीजें हैं वो जोड़े के साथ है, लेकिन आपको उसमें से एक चाहिए। और ये जो आपकी सोचने की प्रक्रिया है, करने का जो आधार है, ये सांसारिक आधार है, क्योंकि आप जो लाइक करते हो उसी के लिए पुरुषार्थ करते हो, उसको प्राप्त होने पे खुश होते हो, नहीं मिलती है तो दुखी होते हो। अब इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा संसार है चारों तरफ आपके, हर चीज जब जोड़े के साथ है और एक हर व्यक्ति को उसमें से एक चाहिए, विचार करके देखो कैसे चैन से जी सकता है, कैसे चैन से जी सकता है। आप बड़े गुणवान हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, ये कोई बुराई अच्छे होना क्या? गुणवान होना क्या बुरी बात है क्या? लेकिन आपके इस गुण को देख के दूसरा व्यक्ति जल जाएगा, ईर्ष्या करने लगेगा, आपकी टांग खींचने लगेगा। इसलिए सत्पुरुषों को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। महाराज जी भी जब एक जगह मंदिर के पास ठहरे थे तो मंदिर का पुजारी मन में सोचने लगा, या जो भी वहां रहता होगा, ये आ गए अब मेरे लिए बाधा हो गई, हो सकता है कुछ ग्राहक उधर मुड़ जाए। तो महाराज जी तो ये सब कुछ थे, उसके मन की बात पढ़ ली उन्होंने। तो भगत जी को बोले, भगत जी सुबह को यहां से चलो, ये खुश नहीं है अंदर से, सत्पुरुष है वो तो किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन उसके मन की वासना है, वो अपनी वासना के अनुसार सोचता है। तो इसीलिए जो व्यक्ति भी आपके संपर्क में आता है, चाहे आपका पड़ोसी बन के आए, चाहे ऑफिस का कलीग बन के आए, चाहे आपका स्टूडेंट साथी बन के आए, तो हर जगह आप जो है वो अपने मन के अनुकूल चीजें चाहते हो, और आपके चाहने से क्या होगा, चीजें मिलती हैं आपको, परिस्थितियां मिलती हैं आपको। माता पिता चाहने से तो नहीं मिले, परिस्थितियां जो मिले तो मिले। इसीलिए आप कुछ भी संसार में क्यों ना कर लो, मानसिक बेचैनी आपकी बनी ही रहेगी, और जितनी ज्यादा मानसिक बेचैनी बनी रहेगी उतनी ज्यादा आपके अंदर से कहना चाहिए कि अशांति बनी रहती है। मानसिक बेचैनी को ही अशांति कहते हैं, परेशानी बनी रहती है, आपका ब्रेन भी डिस्टर्ब रहता है। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जिसकी इच्छाएं कम है, सादगी से गुजारा कर लेता है, खाने का शौकीन नहीं है, घर में जो बन गया खा लिया उसी में खुश रहता है, आप देखेंगे उसकी चिंता फिक्र भी कम होती, उसका चिड़चिड़ापन भी कम होता है, उसका क्रोध भी कम होता है, उससे दूसरों को परेशानी भी कम होती। लेकिन ये सारी बात करने का मतलब ये है, सांसारिक तरीके से जो मनुष्य भी संसार में जीता है, ये उसकी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, नेचुरल उसका उसका स्वभाव होता है कि वो इस द्वंद रूप जगत में दो में से एक चीज लाइक करता है, एक चीज डिसलाइक करता है, ये मुझे मिलनी चाहिए, ये मुझे नहीं मिलनी चाहिए। अब बताइए, द्वंद का सिद्धांत ये है कि जैसे कि सुख और दुख है। अब यदि आपने अध्यात्म पढ़ा है तो महा जी कह रहे हैं, प्रेमी जो सुख स्थिर ना रहे वो तो दुख का रूप, ऐसे घने कलेश से कैसे पावे छूट। वो कह रहे हैं सुख स्थिर नहीं रहता, सुख दुख में बदल जाता, द्वंद रूप है ना। द्वंद का मतलब होता है एक चीज दूसरे का निर्माण करती है, एक चीज दो चीजें हैं, जैसे दिन रात है ये द्वंद है। जैसे जैसे देखते हैं अंधेरा धीरे धीरे कम होगा उजाला आने लगेगा, फिर उजाले में से फिर अंधेरा पैदा हो जाएगा, फिर केवल अंधेरा हो जाएगा। तो इसमें कोई द्वेष नहीं है, दिन रात को आपस में द्वेष नहीं है। हम पकड़ के बैठ जाते हैं हमें ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिकली नेचुरल साइकिल में वो चीज आएगी भी और जाएगी भी। तो एक दूसरे पे उनकी लाइफ डिपेंड भी कर रही है, एक दूसरे का वो निर्माण भी कर रही है, एक दूसरे को एलिमिनेट भी कर रही है। ये नेचुरल साइकिल है पूरी प्रकृति, इसको द्वंद कहते हैं, द्वंद रूप जगत। हमारा द्वंद में संघर्ष होता है, एक को पकड़ना चाहते हैं एक को हटाना चाहते हैं, ये हो नहीं सकता। इसलिए आप सांसारिक बनके कैसा भी जीवन जी लो, पूरी दुनिया में कहीं भी रह लो, आप परेशान ही रहोगे, बेचैन ही रहोगे, मानसिक क्लेश से आपको गुजरना ही पड़ेगा। और इसी प्रक्रिया में जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है, बुढ़ापा मौत में बदल जाता है, आदमी ब्लैंक का ब्लैंक रह जाता है, कुछ नहीं मिलता, आइटम गिनता रहता है कि मेरे सारे लोग तो हैं, रिश्तेदार हैं, ये तो किराए के मकान में रहते हैं, देखो मैंने कितना बढ़िया मकान बना लिया, इस तरह की बातें करता रहता है, जिंदगी खत्म कर देता। तो अब किसी सत्पुरुष से जब हमारी भेंट होती है, अध्यात्म मार्ग का पता लगता है, कोई स्वभाव ही सतोगुणी प्रधान लेके आया है कोई मनुष्य मान लिया, तो बचपन से ही उसके अंदर ईश्वर की लगन होती है, वो ईश्वर के भक्तों के साथ संगत करना चाहता है, सत्पुरुषों के लिखे हुए शास्त्र पढ़ना चाहता है, सत्संग श्रवण करना चाहता है, ईश्वर की उपासना करना चाहता है, दुखी जीव की सेवा करना चाहता है। ये स्वभाव है इसका, कोई कहता नहीं, उसका अपनी इच्छा से करता है। तो उसका जीवन देखकर कई बार जो ये परेशान संसारी लोग हैं, इसके अंदर फिर वो तरंग उठती है, ये तो बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा एकाग्रचित है, बड़ा शांत है, इसके साथ बात करो तो ठंडक मिलती है, इसके पास बैठने को मन करता है। तो सतोगुणी स्वभाव इस दुखी जीव को प्रेरणा देता है कि देखे तो सही, पूछे तो सही, ये करता क्या है, तो कैसे शांत है, मेरे पास जितना साजो सामान है इसके पास उसके मुकाबले में बड़ा कम है, फिर भी बड़ा सुकून से रहता है। तो आपको उसका जीवन सोचने को मजबूर करता है। इसी प्रकार जब किसी गुरु से भेंट हो जाती है, पूर्ण गुरु से, या उसके जीवन पर आपकी श्रद्धा आ जाती है, जैसे महाराज जी हैं, किसी की महाराज जी से भेंट हो गई, किसी की महाराज जी के ऊपर श्रद्धा आ गई, जैसे कि मेरे माता पिता महाराज जी से दोनों ही दीक्षित थे, तो उनका शांत जीवन देखकर मैं भी जब बड़ा हुआ, महाजी की बातें घर में होती थी, अच्छी लगती थी, ऑटोमेटिकली महाजी पे श्रद्धा आ गई। जब बड़े हुए प्रभु की तरफ चलने का मन करा तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, गुरु क्या होता है, उसकी शिक्षा क्या होती है, क्योंकि घर में उपलब्ध थी, वो श्रद्धा लड़ी थी महाजी के पास, महाजी के ऊपर। तो उनके शास्त्र पढ़ना, उनकी वाणी पढ़ना, उनके किस्से कहानियां सुनना, ये बड़ी अच्छी लगती थी। तो अब एक सत्पुरुष पे श्रद्धा जब आपकी आ गई, उसके वचनों पे श्रद्धा आपकी आ गई, तो अब आप उसको फिर विश्वास के साथ पाते हैं। ये जिंदगी के लिए अच्छी चीज है, इसके द्वारा जीवन मेरा अच्छा बनेगा। तो फिर जब आप स्वाध्याय करते हो सत्पुरुषों की बातों का, सत्पुरुषों के जीवन का, तो फिर आपके अंदर ये चीज आने लगती है कि ये संसार क्या है, ये द्वंद्व जगत क्या है, ये सतोगुण क्या है, ये रजोगुण तमोगुण क्या है, ये सारी बातें धीरे धीरे आप समझने लगते हैं। तब आपको इस बात का बोध होता है कि जिस मनुष्य के अंदर सतोगुण होता है वो व्यक्ति ईश्वर का प्रेमी हो जाता है, और जो व्यक्ति ईश्वर का प्रेमी हो जाता है उसके मन की बेचैनी बहुत कम हो जाती है। और यदि मेहनत करे तो मन की बेचैनी इतनी कम हो सकती है कि मन के अंदर एक विचार का उठना भी कठिन हो जाता है। मन के अंदर एक विचार का उठना भी कठिन हो जाता है। उस समय इस जीव को पता लगता है कि मन मुझे तंग नहीं कर रहा है, मन मुझे तंग नहीं कर रहा है। और खाली ये नहीं है तंग नहीं कर रहा है, मन सारी दुनिया से उपरस है, मन की यही हालत होगी तभी मन में उस समय विचार नहीं उठेगा। और जब ना संसार परेशान कर रहा है ना मन का संकल्प परेशान कर रहा है, उस हालत में वो क्या अनुभव करता है जीव, कि अंतर्यामी ईश्वर का आनंद प्रकट हो रहा है, शांति प्रकट हो रही है। तो किसी किसी को तो बचपन से अनुभव ऐसा होता है, जैसे महाराज जी को बचपन से अनुभव ही ऐसा था, पूर्वजन्म के इतने गहरे संस्कार लेकर पैदा हुए थे। कोई कोई उनकी बातें पढ़कर सुनकर, जैसे आप सुन रहे हो, उससे अंदाजा लगाते हैं। ये ऐसी कहानी वाली बात नहीं है, तो वास्तविकता है। महाराज जी को जीवन को हमने देखा है या पढ़ा है सुना है। सत्पुरुषों का जीवन इसीलिए तो संसार में प्रकट होता है, लोग सीखेंगे कहां से। तो संसार की सोच बंद हो जाए तब अंदर आनंद का भंडार खुल जाता है, ये कहां से सीखोगे। ये गुरु से ही सीखा जाता है, सत्पुरुष से ही सीखा जाता है। इसलिए किसी पूर्ण ऋषि पर जब श्रद्धा आती है ना, तो ये सारी अध्यात्म विद्या समझ में आने लगती है। नहीं तो आदमी अध्यात्म विद्या पढ़कर भी अहंकारी बन जाता है, मैं गीता भी पढ़ चुका हूं, मैं वेद भी पढ़ चुका हूं, मैंने ये भी पढ़ लिया है, मैंने वो भी पढ़ लिया है, विद्या का भी अहंकार हो जाता है, जानता कुछ नहीं हो, अनुभवी ज्ञान कोई नहीं है उसके पास, विद्या का अहंकार हो जाता है। तो सत्पुरुष के जीवन को देखकर ये बात स्वतः ही सिद्ध हो जाती है कि मन के अंदर जब संकल्प खत्म होते हैं या रुक जाते हैं, उस समय इस देह के अंदर आनंद का भंडार खुल जाता है। और जिन लोगों ने महाजी को देखा है, उनसे भेंट किए, उनके पास बैठे हैं, इसका अनुभव हो खुद कर, पूरे संसार का होश नहीं है महाजी को, अपनी देह का भी होश नहीं है, लेकिन समाधि लगी, आनंद में इतने लीन है कि ना वहां श्वास चलती हुई दिखाई पड़ रही है, ना वहां मन की चंचलता दिखाई पड़ रही है, देह बिल्कुल स्थिर। और जो समाधि से जाग रहे हैं, बाहर का होश आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है उनकी आंखें देखकर कि गहरे नशे से कहीं वो बाहर आए। इसलिए सत्पुरुष का जीवन ये आपको सोचने को मजबूर करता है कि इस देह के अंदर ईश्वर है, ये कहानी नहीं है। यदि ईश्वर नहीं है तो सब जानते हैं हाड़ मास है, इसके अंदर है क्या, और इस देह में क्या है सब जानते हैं, हर डॉक्टर जानता है इस देह में क्या है। कि ईश्वर देह के अंदर मौजूद है ये डॉक्टर नहीं जानता, ये गुरु जानता है। तो इस जीव को जब मनुष्य जन्म मिलता है तो गुरु ये बात सिखाता है कि मानुष जन्म सफल होवे जब प्रभु दाता चित आए, प्रभु के सिमरन कारने ये दुर्लभ जीवन पाए, प्रभु के सिमरन के लिए ये दुर्लभ जन्म मिला था तुझको। ये तेरे जीवन का हाईएस्ट कर्म था, मोस्ट वैल्यूएबल कर्म था, इससे ज्यादा कीमती कर्म कोई भी नहीं दुनिया में। 1 अरब की संपत्ति आपको फ्री में मिल जाए, इसके आगे तो कूड़ा है, क्योंकि उसने आपको बेचैन करना है, द्वंद के क्लेश को बढ़ाना है उसने। ईश्वर का नाम ऐसा है, ईश्वर विद्या ऐसी है जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, ये मानसिक क्लेश को कम करने के रास्ते बताती है। जैसे जैसे इस विद्या को सीखते हो और जैसे जैसे गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार करने करने की कोशिश करते हो, वैसे ही वैसे आपकी मानसिक बेचैनी हर दिन, हर महीने, हर वर्ष कम होती रहती है, कम होती रहती है। और जहां तक सांसारिक जीवन की बात रही, वो सत्पुरुष कहते हैं सांसारिक जीवन तेरे प्रारब्ध के अनुसार बीतेगा। जो परिस्थितियां तेरी देह के आगे आएंगी, जिनके लिए तुझे कर्म भी करना होगा, ये सारा का सारा ईश्वर विधान के अनुसार बीतेगा, तू स्वतंत्र नहीं है। इसलिए महर्षि रमण से जब पूछा गया, महर्षि क्या स्वतंत्र इच्छा होती है, तो महर्षि रमण कहते हैं देयर इज नो फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा नाम की कोई चीज होती ही नहीं। अब बताइए, मनुष्य पूरी तरह से कोहलू का बैल है, प्रारब्ध की रस्सी बंधी हुई है इससे। अरे और तो और, सत्पुरुष की देह भी प्रारब्ध के अधीन चल रही है। मोक्ष मिलने के बाद भी, इस देह से सेपरेशन होने के बाद भी, सेपरेशन भी कैसा, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं जिस समय अंदर ईश्वर दर्शन हो जाता है, ईश्वर में स्थिति हो जाती है, उस समय जो जीव है और जो ये शरीर है, ये ऐसे हो जाते हैं जैसे कि पका हुआ नारियल होता है ना, गोला अंदर का गिरी अलग है और खोल अलग है। जब कच्चा है तो दोनों एक है, फोड़ोगे तो गिरी को भी चोट पहुंचेगी, वो भी टूट जाएगी और खोल भी टूट जाएगा, लेकिन पक गया तो खोल टूट जाएगा, गिरी साफ रहेगी। तो शरीर चाहे मर भी जाए, जीव का कुछ नहीं बिगड़ता, वो स्वतंत्र, देह के रहते रहते वो स्वतंत्र है। ये कब होता है, ये तब होता है जब वासना रूपी पानी उस नारियल के अंदर सूख जाता है, तो ये जीव अलग हो जाता है इस देह। तो मन क्या है, ये पानी है, वासना रूपी जल भरा हुआ है, तो मन के अंदर वासना का जल सूख जाता है तो मन निर्विकल्प हो जाता है, कल्पना खत्म हो जाती है, उस हालत में जीव ईश्वर एक हो जाते हैं। ईश्वर आनंद रूप है, शांति रूप है, इसलिए जीव भी आनंद रूप हो जाता है, शांति रूप हो जाता है। ऐसे जीव के संपर्क में जो आएगा उसके अंदर भी शांति की लहरें मन में आएंगी, इसलिए ऐसे सत्पुरुष का जीवन प्रभावित करता है जो भी उसके संपर्क में आए। उसके वचन हजारों वर्षों तक लोगों को प्रेरणा देते हैं, हजारों वर्षों तक। हमारे मन के दुख को दूर करते हैं। तो संसार में आप नहीं सीख सकते ये बात कि वासना दुख का कारण है, मन की कल्पना दुख का कारण है, इच्छाएं दुख का कारण है। संसार में ये बात नहीं सिखाई जाती, दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में ये बात नहीं सिखाई जाती, कोई प्रोफेसर नहीं जानता, ये केवल सत्पुरुष जानता है, केवल सत्पुरुष जानता है। इसीलिए उसकी जो विद्या है वो जब तक आप नहीं सीखोगे, तब तक आपको इस मन की बेचैनी से मुक्ति का कोई साधन संसार में नहीं है। संसार के मेथड्स अपनाकर इस बेचैनी को बढ़ा तो सकते हो आप, कम नहीं कर पाओ, क्योंकि जो कर्म भी करोगे संसार में वो संस्कार बनाएगा, अपने संस्कार बनाएगा तो स्वभाव में परिवर्तन करेगा, स्वभाव में परिवर्तन होगा तो उसके अनुसार से इच्छा की तरंगें आपकी वैसी ही निकलेंगी, वैसे कर्म करोगे। इसीलिए शांति का रास्ता संसार से होकर नहीं जाता, शांति का रास्ता करतार से होकर जाता। इसलिए कहा गया कि कामना रूपी अग्नि में जीव जले दिन रात, मंगत मारग धर्म में जीव शीतल हो जाता है। धर्म क्या है? जिसने मन के अंदर, बुद्धि के अंदर या जीवन के अंदर ईश्वर को धारण कर लिया वो धर्म है। जिसने मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, जीवन के अंदर संसार को धारण कर लिया वो अग्नि है, वो अग्नि जीव जले दिन रात। मैं जीव हूं, जिंदा वस्तु हूं, क्योंकि मेरे अंदर होश है, मैं जानता हूं। ना मेरी हड्डी कुछ जानती है, ना मांस कुछ जानता है, ना खून कुछ जानता है। जो कुछ भी शरीर में है वो कुछ नहीं जानता, उसमें जानने वाली चीज कोई है ही नहीं, मैं जानने वाला हूं। और मैं देह से ऊपर हूं, इसीलिए इस देह की मौत होती है, मेरी मौत नहीं होती, मैं बच जाता हूं। मेरे संस्कार भी बच जाते हैं, मेरा स्वभाव भी बच जाता है, मेरा कर्मफल भी बच जाता है। ये सब मन के अंदर सुरक्षित रहता है, तो मन मेरे संग जाता है, जीव मन एक साथ ही रहते हैं। फिर जीव स्वतंत्र नहीं रहता, जीव मन साथ में ईश्वर भी रहता है। तो जीव मन और ईश्वर ये तीनों हमेशा एक साथ रहते हैं, और इनको कोई नहीं मार सकता। इस देह से स्वतंत्र रहेंगे, तो ये देह मरी तो मन बिना देह के भी नहीं रहता, तो क्योंकि मन को सूक्ष्म शरीर कहते हैं, ये स्थूल शरीर है। तो मन से ही इस स्थूल शरीर का फिर निर्माण हो जाता। जैसे किसी वृक्ष को काट दो, जड़ उसकी जिंदा है तो फिर कल्ला फूट जाएगा। तो जड़ क्या है? ये मन जड़ है, संसार की जड़ है ये मन, ये सूक्ष्म संसार है। तो इसीलिए इससे फिर देह पैदा हो जाती है। इसीलिए मनुष्य जन्म ऐसा है कि यहां इस बीमारी को ये जीव समझ सकता है और इस बीमारी का इलाज कर सकता है। संसार में संसारी तरीके से जब जीवन जिया जाता है, इसमें ना इसको बीमारी करके देखा जाता है, ना इसका कोई इलाज जानता है। इसलिए सांसारिक जीवन यदि कोई बड़ा सफल जीवन व्यतीत कर रहा है और बड़ा अंदर से खुश होता है, तो सत्पुरुष कहते हैं ये इसने पशु समान जीवन व्यतीत किया है, इसने पशु समान जीवन व्यतीत किया है, क्योंकि इसको पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं, मेरा रोग क्या था, क्या करने आया था, क्या कर रहा हूं, पता ही नहीं इसको, तो पशु है। तो सदगुरु की निगाह में सफल इंसान भी संसार में पशु समान है, क्योंकि उसकी बुद्धि में विवेक नहीं है, जिंदगी की सही समझ नहीं है, ईश्वर का विज्ञान का पता ही नहीं है उसको। इसलिए ऐसे मनुष्य को वाणी तो स्टैंप लगा रही है, बिना विवेक मानुष जो हुई पशु समान जीवन सो हो। आप बड़ा अच्छा इंसान समझते हो अपने आपको, बड़ा श्रेष्ठ आदमी समझते हो, बड़ा ऊंचा इंसान समझते हो, और वाणी आपको पशु कह रही है। जरा विचार करके तो देखो, वाणी आपको पशु कह रही है। तो मनुष्य कब कहलाओगे? प्रभु के सिमरन कारण ये दुर्लभ जीवन पाए, जिसने इस बात को समझ लिया वो फिर इंसान कहलाने योग्य है, वो है इंसान। तो ये मनुष्य जब इस सांसारिक जीवन को विकार करके देखता है, क्योंकि वाणी फिर उसकी साइंस भी बता रही है ना कि पांच विकार महादुखदाई जले सकल संसारा, परमारथ प्रतीत बिन नहीं जीव पाए निस्तारा। मन के अंदर जो भी आशा तृष्णा है, जो भी संसार की इच्छाएं हैं, ये पांच विकार से युक्त हैं, या पांच विकार के ऑफशूट्स हैं, ये पांच विकारों के अंकुर हैं ये। तो आप विकारों की कमाई कर रहे हो संसार में और बड़े खुश हो रहो, मैं बड़ा अच्छा आदमी। अरे जो इंसान विकारों की कमाई कर रहा है, अर्निंग कर रहा है, वो अच्छा आदमी कैसे हो सकता है? इसलिए संसार में अच्छा आदमी बुरा है, बुरा तो है ही है, जिसको आप अच्छा इंसान कर रहे हो वो भी बुरा है, क्योंकि विकारों की कमाई वो भी कर रहा है। तो ये पांच तत्व का बना हुआ शरीर, पांच तत्व का बना हुआ संसार, इन पांच तत्वों के पांच प्रभाव हैं, ये पांच गुण हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इसलिए जो अपने आप को देह समझकर सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहा है वो इन पांच विकारों की कमाई कर रहा है। इसीलिए उसको कभी भी मानसिक चैन नहीं मिल सकता, चाहे महाराज जी कहते हैं प्रेमी एक एक जन्म हजार हजार वर्ष का भी मिल जाए, ऐसे हजार जन्म भी मिल जाए, लेकिन इसी तरह से जिएगा मानसिक विचार में। तो मनुष्यों में भाग्यशाली मनुष्य वो है जिसको इस बीमारी के विज्ञान का शास्त्र के द्वारा पता लग गया, गुरु के द्वारा पता लग गया, और फिर वो दुनिया की नकल नहीं करता है, वो फिर गुरु को देखता है कि गुरु इस विकार से बचने का, इन विकारों को कम करने का क्या रास्ता बता रहा है। वो संगत में इसलिए नहीं आता कि मैंने मेंबर बढ़ाने हैं संगत में, लोगों का कल्याण करना है। महाराज कहते प्रेमी तू अपना जीवन बना, तू अपना कल्याण कर, तूने यदि अपना कल्याण किया तो तेरे जीवन को देखकर लोग अपना कल्याण करेंगे। तेरे जीवन में धर्म जब आएगा तो धर्म दूसरों के, तेरा जीवन का धर्म दूसरों को प्रेरित करेगा वो। महाराज कहते प्रेमी संसार में धर्म इस तरह फैलता है, बातों से धर्म नहीं फैलता, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बना लेता है, इसे धर्म नहीं फैलता, इसे किसी के चित्त को ठंडक नहीं आएगी। तेरा जीवन यदि सदाचारी बन गया, भक्ति प्रधान बन गया, ईश्वरवादी बन गया, वो है समतावादी जीवन। तो जब जीवन तेरा खोखला है, जहां संगत में जाएगा वो संगत भी बिगड़ जाएगी, ये तो संसारी आदमी है। संसारी आदमी तो संगत को बनाएगा या बिगाड़ेगा। संगत का मतलब होता है जिन मनुष्यों के बीच में बैठकर उसको ईश्वर की याद आए, मन में शांति आए, एक दूसरे को देखकर ईश्वर मार्ग पर और तेजी से चलने की प्रेरणा पैदा हो, उसको कहते हैं संगत। ये दुनिया में संगतें कैसी होती हैं आप खुद जानते हैं, एक दूसरे को देख के ईर्ष्या द्वेष पैदा होती है, कहां है संगत। साची संगत प्रभु रूप है, नित प्रभु का करे विचार। संगत उसे कहते हैं जो साची संगत होती है, जो सत्य के रास्ते पर, सत्य के केवल एक ईश्वर है, जो ईश्वर के रास्ते पर है, और कोई उद्देश्य नहीं होता। तो इस मानसिक क्लेश से मुक्त होने के लिए महाराज जी ने यह तपोभूमि भी बनाई, और क्या उद्देश्य था। देखिए आप खुद सब अपने व्यवहार से ही एक छोटी सी बात भी आप सीख सकते हो, आप देखते भी हो, आप सब जानते हो ये तपोभूमि है। तपोभूमि क्या होता है, तपोभूमि का स्थान इसलिए है ये ताकि यहां बिल्कुल एकांत में व्यक्ति प्रेम से ईश्वर की याद कर सके, ईश्वर के बारे में स्वाध्याय कर सके, और यदि साथी उसके ठीक हैं उनके साथ उस ईश्वर की चर्चा कर सके मार्ग सीखने के लिए, खाली बात करने के लिए नहीं, मार्ग में उन्नति करने के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं आता। तो यहां पे कितनी शांति होनी चाहिए, कितनी शांति होनी चाहिए आप कि एक दूसरे की आवाज भी दूसरे के कान पर ना पहुंच पाए। लेकिन यहीं पर ही हम लोग आते हैं और इतनी जोर जोर से बातें करते हैं कि 8-10 कमरों में उस व्यक्ति की आवाज पहुंच जाती है, हाँ कोई बात कर रहा है। तो कितने बेहोश हैं, कितने नादान हैं, ऐसे स्थान पे आकर भी हमको होश ही नहीं, हम कर क्या रहे। वाणी के द्वारा पाप हो रहा है, हमें कहां होश है। इसलिए संसार में कितनी गलतियां करते होंगे जब विचार करके तो देखो, ऐसे स्थान पर आकर भी हमको होश नहीं है तो मन की हमारी क्या हालत है, बुद्धि की क्या हालत है कि संसार में क्या करते होंगे हम। इसीलिए मनुष्य को इस तप के मार्ग से गुजरना पड़ता है। इसलिए सारे ऋषि एक सुर से कहते हैं एकांतवास गृहस्थी जी के लिए बहुत लाजमी है, जरूरी है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे गृहस्थी को यदि तरना है, यदि ईश्वर मार्ग पर चलना है, उसको बीच बीच में एकांतवास करते ही रहना चाहिए। पहले घंटों का, फिर दिनों का, फिर हफ्तों का। और एकांतवास में क्या करना है, वो ईश्वर के लिए रोए, हे प्रभु कृपा करो। कृपा किस लिए, मेरा मन तेरी याद में रमा रहे। तेरी याद करने बैठूं तो ईश्वर की याद, वो संसार की याद ना आए, ईश्वर के आगे रोए। तो जहां समय वो बातों में व्यतीत करेगा ईश्वर के लिए रोएगा वो। तो कितने बेहोश होकर हम संसार में जीते हैं, हमको होश ही नहीं, और फिर भी अपने आप को बड़ा इंसान कहते हैं, दूसरों को तुलना करते हैं, देखो मैं कितना सफल इंसान। अहंकार जो दोष है उसको बढ़ाकर मैं खुश होता हूं, अहंकार तो दोष है ना। अहंकार देह की याद दिलाता है, ईश्वर की याद भुलाता है, ये तो दोष हुआ। इसलिए मन को यदि आपने संभालना है, मन के अंदर संसारिक जो विचारधारा चल रही है, संसारिक चिंतन चल रहा है, हर वक्त चल रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है, इसको यदि मैं मानसिक क्लेश का कारण समझता हूँ, बेचैनी का कारण समझता हूँ, तब फिर मुझको सत्पुरुष के मार्गदर्शन के अनुसार चलना चाहिए। और यदि मैं सत्पुरुष की बात नहीं मानता और सांसारिक तरीके से ही जीता रहता हूँ, वैसा ही स्वभाव जैसा मेरा नेचुरल है वही बनाए रखता हूँ, तो जीवन निरर्थक है आपका, आपकी संसार में कोई उपयोगिता नहीं। इसलिए होश में आकर इस सांसारिक जीवन को पांच विकार का स्रोत समझकर मैंने ईश्वर को पकड़ना है, वो अंतर्यामी है, गुरु को पढ़ना है, पकड़ना है, वो मार्गदर्शन कर रहा है कि संसार से हटकर तू ईश्वर के साथ कैसे जुड़ेगा। तो इस प्रकार से जब मैं अपने जीवन का निर्णय करता हूँ और सतमार्ग की तरफ चलता हूँ, तो धीरे धीरे मेरी मानसिक बेचैनी कम होगी और ईश्वर की याद बढ़ती चली जाएगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।